श्री श्री गौर निताई की श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस 21 फरवरी के शाम की कथा में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की जय हो। यहाँ पर अनेकों लीलाओं के माध्यम से भगवान ने ये बताया है कि एक बार ब्रज भूमि में आने के बाद में और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे तीर्थों ने और सारे सबको आवाज़ आ रहा है क्या? आवाज़ कम है ना, और आवाज़ बढ़ा दो, मुझे भी कम सुनाई पड़ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसा है कि हमारे सारे अभी नौजवान उत्साही कर्मचारी जो है वो धीरे धीरे बुढ़े हो रहे हैं। वहाँ जाएंगे, फिर चश्मा खोलेंगे, पहला चश्मा लगाएंगे, फिर टॉर्च खोलेंगे, फिर देखेंगे, फिर बड़ा करेंगे। ऐसा है, समय का परिणाम सबके ऊपर होता है। तो क्या कह रहा था मैं, श्री वृंदावन धाम की जय। यहाँ पर भगवान ने कई बार अनंत लीलाओं के माध्यम से ये बताया है कि एक बार ब्रज में आने के बाद और कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। जितने भी इस विश्व में तीर्थ हैं, जितने भी इस विश्व में पवित्र स्थान हैं, धाम हैं, वो सब ब्रज में विराजमान हैं। क्योंकि ये सारे तीर्थ जो है वे भी व्यक्ति हैं, ये भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं वो सब। वो कुछ भक्त नदी के रूप में सेवा करते हैं, कुछ भक्त पर्वत के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, कुछ भक्त कुंड के रूप के सेवा रूप में सेवा करते हैं, कुछ समुद्र के रूप में सेवा करते हैं, क्षीर सागर, वो भी विरजा देवी के पुत्र हैं, वो हर एक सागर भक्त है भगवान का, हर एक चीज भगवान के भक्त है। तो सरोवर सरोवर पर्वत नदी हरे कृष्णा। तो एक बार नंद बाबा ऐसे ही यहीं पर गंगा जी की महिमा सुन रहे थे। तो गंगा जी की महिमा सुनते सुनते कथा ऐसी आती है, सब लोग ध्यान से सुना, बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं, जितना हो सके उतना बताएंगे। आप लोग बहुत लेट आते हो, मैं 7:45 आके बैठा हूँ यहाँ पर, सब लोग धीरे धीरे आते हैं। तो कथा वाले जो कथाकार होते हैं वो बताते हैं कि गरुड़ जी एक बार अपने भक्ष जो है सांप को पकड़ते हैं, वो लेकर उड़ते हैं। फिर पक्षी कैसा उड़ता है, कभी ऐसा उड़ता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो दोनों हाथ में मतलब उनकी जो पंजा है उसमें सांप है, और सांप लंबा होता है ना, तो लटकता रहता है सांप, उसको लेकर उड़ रहे हैं। तो बीच में गंगा जी आती है, नदी, थोड़े से अपने आप को लो हो जाते हैं। जैसे लो हो जाते हैं तो जो सांप की पूँछ है, थोड़ा सा पूँ हो रहा है, पूँछ है, वो गंगा जी के जल को स्पर्श करती है। वो जैसे ही उस सांप की पूँछ गंगा जी के जल को स्पर्श करती है, वो तुरंत ही वो सांप का रूपांतर चतुर्भुज विष्णु दूत के रूप में होता है। तुरंत सारूप्य मुक्ति हो जाती है उसकी, सांप योनि से मुक्त होकर वो वैकुंठ शरीर प्राप्त कर लेता है। तो जो हाथ में दोरी के समान था, अचानक एकदम व्यक्ति के समान हो गया ना वो, तो दिखते रहे क्या हो गया, देखते तो जो भक्ष मैंने पकड़ा था वो तो विष्णु दूत हो गया, मेरा वंदनीय हो गया। वो तुरंत उसको पीठ पे बिठाते हैं, लाइक मतलब वाहन पे बिठाते हैं मालिक को, बिठाकर वैकुंठ ले जाते हैं सीधा स्ट्रेट। तो ये कथा नंद महाराज और सारे ब्रजवासी सुन रहे हैं, तो नंद महाराज उधर ही खड़े हो जाते हैं, बोलते अभी कभी हरिद्वार जाना है और अभी कभी स्नान करना है। तो श्री कृष्ण भगवान में बैठे उसके अंदर, तो उनको ये आइडिया अच्छा नहीं लगता है। तो बोलते बाबा आपको हरिद्वार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, हरिद्वार जाके गंगा जी में स्नान करेंगे। नहीं, हम गंगा जी को ये बुला लेंगे। तो बोले अभी क्या बोलेंगे बालक को कहा है रोए, थोड़ा आवाज कम कर लो चलेगा। हरे कृष्णा, एको मत देना उसको, हरे कृष्णा, हाँ भी ठीक है। तो भगवान सबको लेकर गिरिराज जी के बीच में गए, सबको लेकर, और गिरिराज जी के बीच में एकदम मध्य भाग में गए, गिरिराज गोवर्धन के, और सबके आंखों के सामने भगवान के हृदय से गंगा जी प्रकट हो गई। ऐसे सबको दिखाई पड़ा कि अरे हमारे छोटे कन्हैया के हृदय से गंगा जी प्रकट हो गई, मगरमच्छ में बैठी हुई है, हाँ, पूरे चार भुजा वाली, और सामने जाके ऐसे प्रकट हो जाती है। वो कहते हैं स्वामी क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो कहते हैं कि अपने जल को यहाँ पर छोड़ो, हमारे बाबा स्नान करना चाहते। तो गंगा जी उनके आंखों के सामने अपना जल वहाँ विस्तार कर लेती, और ब्रज का सबसे बड़ा कुंड, विशाल समुद्र जैसा विशाल, वहाँ पर तैयार हो जाता है। और फिर सब लोग, पहले जिन्होंने शंका किया था क्या कह रहा है बच्चा, वो अभी शंका नहीं करते, तुरंत जाके सब लोग स्नान करते हैं। तो वो है मानसी गंगा। फिर जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म नहीं हुआ था, राजा रानी का भी जन्म नहीं हुआ था, आपको पता है शायद कि दोनों जोड़ियों को बड़ी वृद्धावस्था में संतान प्राप्त हुई है। नंद बाबा भी कुछ 85 साल के थे, और ऋषभानु बाबा भी ऐसे ही 85 या 90 साल के थे। ऑफकोर्स द्वापर युग में तो 85 साल कोई बड़ी उम्र नहीं है, फिर भी उम्र तो बड़ी थी उनकी, क्योंकि द्वापर के अंत की समय था वो। तो बहुत देर तक उनको संतान नहीं हुई थी, संतान समझते हैं ना, बेबी, नो चाइल्ड। तो नंद बाबा ने और यशोदा माई ने मन्नत मांगी थी कि जब हमें संतान होगी ना तो हम चार धाम की यात्रा करेंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे, दर्शन करके आएंगे। तो यथावकाश उन्हों यमुना किनारे शिफ्ट हो गए। फिर रावल में राजा रानी का जन्म हुआ, उसके पहले कृष्ण भगवान का गोकुल में जन्म हुआ, फिर कुछ समय रहे वहाँ पर, वापस लौट के आए वगैरह वगैरह। तो एक समय फिर नंद बाबा को मन में आया कि अभी हमने जो मन्नत मांगी थी पूरी हो गई, अभी को मन्नत पूरी करनी चाहिए, जाना चाहिए। तो एक दिन वो घर में तैयारी चल रही थी जाने की, तो कन्हैया पूछते क्या जा रहे आप लोग सब लोग, ऐसा है कि आपका जन्म होने के पहले हमने मन्नत मांगी थी कि आपका जन्म होगा तो हम चार धाम की यात्रा करेंगे। तो फिर कृष्ण को अच्छा लगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई चार धाम जाने की जरूरत नहीं है, मैं चार धाम को ये बुला लेता हूँ। हरे कृष्ण, आग बंद कर लो सब लोग। तब सब लोग काम में वन में थे, सब लोग काम में वन में थे, तो काम में वन में सब लोगों ने आग बंद कर लिया। अभी बोलते आग खोलो, वैसे आग खुला, ये सब हिमालय के बीच में सब लोग, हाँ मतलब नर पर्वत, नारायण पर्वत, फिर बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ, फिर गंगोत्री, यमुनोत्री, सब आँखों के घर की पैड़ी, हरिद्वार, सब सब कुछ उनके आँखों के सामने। और इतना आसान कि कुछ समय में, कुछ मिनटों में जाके पार कर सकते हैं उसको। ऐसा नहीं कि तीन महीने लगेंगे आपको चढ़ने के लिए उसको। लोग तो वापस नहीं आते थे, कोई निकलता था ना बुढ़ापा, बूढ़ा आदमी, तो उसको पूरी तरह से बाय बाय करके भेजते थे कि भाई दर्शन नहीं होगा उसको वापस। और कोई लौटता भी नहीं था, वैसे ही उधर उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो ये भी जैसे ही प्रकट हो गया तो सब ब्रजवासियों ने गंगा जी में, जमुना जी में, यमुनोत्री गंगोत्री में सब जगह स्नान कर लिया, गर्म कुंड में स्नान कर लिया, बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए, केदारनाथ के दर्शन कर लिए, सबके दर्शन कर लिए, बहुत बढ़िया, एकदम आनंद प्राप्त किया एकदम। तो आज भी वो काम में मन में आप जाएंगे यहाँ से, आज 25 और कम से कम 50 किलोमीटर है यहाँ से, 50-55 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है। वहाँ पर केदारनाथ के दर्शन है, और आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि वहाँ पर पत्थर से बना हुआ एक विशाल बैल है उधर, एक अपने आप बना हुआ है, कोई किसी ने बनाया नहीं उसको, और उसके नीचे केदारनाथ जी का लिंग है, और 10 मिनट में आप चढ़ के जा सकते हैं, और कोई बर्फ नहीं, कुछ नहीं, एनी टाइम यू कैन गो टेक दर्शन। और बद्रीनाथ आदि बद्री नाम का है, उसको आदि केदार कहते हैं, और ये आदि बद्री है। फिर आगे हर की पेड़ी सब कुछ है उधर, एवरीथिंग इज देयर। अभी तो सब सूख गया है कलयुग के प्रभाव से, लेकिन पहले वहाँ पर गंगा जी का स्रोत भी था, जमुना जी का स्रोत भी था, हर की पेड़ी सब कुछ था उधर। आज भी हम देख सकते हैं, लेकिन सूखा है सब कुछ। बहुत सुंदर और बहुत रमणीय स्थान है। आप कभी बद्रीनाथ केदारनाथ गए हो आप में से कोई? अगर आप गए हो तो आपको वहाँ जाने के बाद वैसे ही अनुभव होगा। लेकिन एक ही उसमें लाभ ये है कि जितना कठिन वहाँ जाना है उतना ही आसान यहाँ जाना है। मतलब आप सोच सकते हैं ना, वहाँ पर देखो, एक तो हरिद्वार जाओ, पहले दिल्ली से हरिद्वार जाओ, हरिद्वार से बीस बस पकड़ो, फिर 24 घंटे आप जोशीमठ तक पहुँचो, फिर एक रात उधर रुको, तब तक तो बहुत कड़ी बर्फ वाली ठंड चालू हो जाएगी। उसके बाद में आप दूसरी जगह, दूसरी बोट बस करो या तो हेलीकॉप्टर करो, फिर और 8 घंटा 10 घंटा फिर पहले बद्रीनाथ पहुँचेंगे। वहाँ तो तूफानी बर्फ़ की वर्षा होती है। फिर वहाँ हम लोग गए थे, हमारी शादी नहीं नहीं हुई थी तभी हम लोग वहाँ पर गए थे, तो गुरुदेव ने कहा था कि बिना चप्पल बद्रीनाथ की आरती अटेंड करनी है। तो हम लोग रात को हाँ हाँ एकदम यस यस एकदम फायर्ड अप थे, सब लोग जवान लोग थे। तो लेकिन ये रात की बात थी, रात बहुत लंबी होती है प्रभु, रात में क्या क्या होता है मालूम है आपको? तो रात में इतनी वर्षा हुई बर्फ़ की, इतनी वर्षा हुई कि 8 फीट का बर्फ हमारे घर के बाहर जमा हो गया, जहाँ पर हम लोग रहते थे, 8 फीट। और वो हमेशा हमारे मिलिट्री आती है उसको निकालने के लिए, अगर आपको रूम के बाहर निकलना है तो मिलिट्री आके जब निकालेगी तब आप रूम के बाहर जा सकते हो। तो हम लोग आई, रास्ता खुला हो गया, लेकिन जितना बर्फ जमा हो गया ना, वो ऐसा सब इकट्ठा होके वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, लगाओ लगाओ, तो उसको जोड़ लो, हाँ इधर जोड़ दो ऐसे ही, नीचे करो, हाँ ठीक, थोड़ा फूटे गांड के, हाँ बस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जब हम निकले बाहर तो इतनी बर्फ जमा हो गई, सब जगह बर्फ ही तरफ, बर्फ का रास्ता था पूरा। हम नंगे पैर कम से कम 15 से 20 मिनट बर्फ के रास्ते से चलकर बद्रीनाथ के मंदिर में गए और बद्रीनाथ का मंदिर में पूरा बर्फ कंप्लीट, मतलब देर इज नो फ्लोर। उधर खड़े होकर कितना मिनट आरती किया था हमने? आधा घंटा तो आरती किया होगा ना कम से कम, आधा घंटा बर्फ पे खड़े, एकदम भक्तिभाव का क्या परिसीमा। और फिर वापस लौट के आए, तो वापस लौट के आए तो सबकी हालत इतनी ख़राब हो गई, तो अपने अपने रूम में सब लोग घुस गए और मैं भी अपने रूम पे चला गया। कुछ देर बाद मुझे बताया गया कि हमारी पत्नी बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, शी इज़ फ्रोजन, आपको जल्दी बुलाया है। तो मैं गया रूम में तो देखा किधर है, वो 10 रजाई के नीचे थी। 10 रजाई के नीचे से हाथ डाल के मैंने पैरों को मसाज किया और फिर गरम गरम कुछ पिलाया, तब होश आया। हाँ, कितना कष्ट है, मतलब उतने आ जाएंगे तो एकदम आसान, कोई तकलीफ ही नहीं, 10 मिनट में बद्रीनाथ चढ़ के जाएंगे आप, जमीन से बद्रीनाथ की पीक तक। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि धाम बाहर के सारे भगवान ने प्रकट तो किए हैं, लेकिन उसमें एक और विशेष चीज़ है कि बाहर की जो कठिनाई है वो सब खत्म करके यहाँ पर बहुत आसान कर दिया उसको, और बाहर जो लाभ है वो सारे लाभों के साथ एक लाभ और ऐड किया है, वह है कृष्ण प्रेम, यहाँ पहुँचने के बाद आपको मिलेगा। क्या क्या बताया मैंने, एक तो सबको यहाँ बुलाया है, सेकेंड जो कठिनाई वहाँ पर है वो माइनस करके आसान कर दिया है, और थर्ड कृष्ण प्रेम जो वहाँ पर, खैर गारंटी नहीं उसकी, जहाँ पर आप जाएंगे उधर तो वो आपको यहाँ पर निश्चित मिलेगा जब आप यहाँ पर दर्शन करेंगे उसका। ऐसे ही राधा और कृष्ण अपने सखा सखियों के साथ में एक बार काम्यवन में ऐसे खेल रहे थे, तो राधा रानी और गोपियों को ऐसा मूड आया कि अरे कन्हैया, हमने सुना है तुम पिछले जन्म में राम थे। तो हमारे कन्हैया बोलते, कौन राम? मुझे नहीं पता राम, मैं कहा राम, बोले राम तो भगवान थे। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं हमने सुना था आपने समुद्र में सेतु बांधा था, आपने धनुष तोड़ा था शिव जी का। हाँ मैंने सुना था राम ने तोड़ा था, लेकिन मैं तो राम नहीं था। बहुत देर तक वर्णन करते वो, तो कृष्ण ना 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 बोलते जाते हैं। फिर गोपियाँ बड़ा गुस्सा करने लगती है, फिर राधा रानी कहती है, अभी हमको राम का रूप दिखाओ नहीं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। तब ये डर जाते हैं, अभी तो मामला गंभीर हो गया, तो बोलते हैं ठीक है कोशिश करता हूँ। और बोलते आप आग बंद करो सब लोग। तो सब गोपियाँ एक जगह बैठ जाती हैं और आँख बंद कर लेती हैं, और सब ग्वाल बाल इधर और कृष्ण बलराम इधर, और सब लोग आँख बंद करते हैं सिवाय कृष्ण के। और अभी आँख खोलो, जैसे आँख खोलते हैं तो श्री कृष्ण प्रभु रामचंद्र के रूप में, बलराम जी लक्ष्मण के रूप में, और दो भाई, सारे बंदर, सारे ग्वाल बाल बंदर के रूप में, और सबके आंखों के सामने वहां पर विशाल समुद्र उत्पन्न होता है सबके आंखों के सामने। और उन विशाल समुद्र के बीच में से एक साइड से प्रभु रामचंद्र धनुष धारण किए हुए ऐसे जाते हैं और पत्थर जो है उठा उठा के डालते हैं बीच में, और कुछ 5 मिनट के अंदर पूरा सेतु बन जाता है। जिनको इतना टाइम लगा रामचंद्र प्रभु को, वो कुछ ही मिनटों में पूरा सेतु बना लेते हैं, पूरी वानर सेना जो है वो यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है, वहाँ से श्रीलंका प्रकट हो जाता है, और श्रीलंका में दशानन रावण करके प्रकट हो जाता है। फिर राम धनुष उठाते हैं, एक बाण मारते हैं और रावण गिर जाता है। प्रभु रामचंद्र की जय। फिर आकाश में आवाज आती है, आंख बंद करो। सब लोग आंख बंद करते, फिर आंख खोलो, वापस कृष्ण बलराम बाल बाल, और सेतु वैसा ही, समुद्र वैसा ही, लंका वैसे ही। सब लोग इतना आनंद आता है उनको देखकर। आज भी काम्यवन में जाएंगे तो वहाँ सेतु है, जल तो नहीं अभी, लेकिन इतना अद्भुत दृश्य है, मैं जब पहली बार गया था इतना दंग रह गया था देख के, किधर भी पत्थर नहीं है लेकिन बीच में से एक पत्थर की लाइन से जा रही है, बढ़िया मतलब पत्थर मतलब चट्टान, खड़क बोलते ना उसको, खड़क चट्टान है ऐसी, लाइन से जा रहे ऐसे 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 बहुत दूर तक। वहाँ पर उधर एक मंदिर भी था लंका का, अभी वो भी नष्ट हो गया है। इतना रमणीय स्थान है वो। और प्रभु रामचंद्र ने जहाँ पर बैठकर शिव जी का स्थापना किया था और पूजन किया था, वो रामेश्वर भी वहाँ पर प्रकट होता है। सबसे पहले तो वो प्रकट होता है, बताना भूल गया आपको मैं। सबसे पहले प्रभु शिवलिंग प्रकट करते हैं, फिर सब लोग बैठकर शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव जी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर वहाँ से सेतु बंध का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आज वहाँ पर रामेश्वर भी है, सेतु बंध भी है, श्रीलंका भी है, सब कुछ है। फिर लोगों को लगता है कि कृष्ण ने 16,108 बीवियों से शादी किया, 16,108। कुछ लोग निंदा भी करते हैं उनकी इसके लिए, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि उन्होंने 3 करोड़ कन्याओं से भी शादी किया है। 3 करोड़ गर्ल्स ही गॉट मैरिड। इंटरेस्टिंग ना, उसकी कथा ऐसी है कि यह ना सिंधु देश, मतलब आज का जो सिंध प्रांत है उसको सिंधु देश कहते हैं, मतलब पाकिस्तान में आता है वैसे वो। तो सिंधु नरेश थे राजा बिमल, बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, वो बहुत ही बड़े भक्त सिंधु नरेश राजा बिमल। वो हमेशा भगवान की भक्ति में मस्त रहते थे, सब कुछ था उनके पास। उनके पास मेरे ख्याल से ये थाउजेंड्स ऑफ वाइव्स, लेकिन उनको संतान नहीं हो रही थी। नो सन, नो डॉटर, नो सन। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को बुलाया और पूछा कि महाराज जी बताइए, कुछ सब कुछ है राज्य में लेकिन संतान नहीं हो रही है। तो मुनि ने ध्यान लगाया और उनके भूत भविष्य में देखा, तो उन्होंने कहा कि आपके भाग्य में पुत्र तो नहीं है निश्चित रूप से, लेकिन कन्या है। अच्छा, तो कहते हैं एक कन्या नहीं है, 3 करोड़ कन्या होंगी आपको। तो वो तो राजा था, उसको तो इतना टेंशन नहीं आया, लेकिन फिर भी 3 करोड़ कन्या भी कोई बात होती कि नहीं। अभी 3 करोड़ पति लाना इतना मुश्किल काम है, एक कन्या को पति ढूंढना कितना है। अभी एक सीता को जन्म दिया जनक राजा ने, और वो बेचारी खेल खेल में, वो जो धनुष था शिव जी का, वो ऐसे खेल खेल में घुमा रही थी उसको, तो पिताजी बहुत दंग रह गए उसको। तो गुरुजी ने कहा कि अरे अगर ये इतना शिव धनुष को उठाकर खेल रही है खिलौने की तरह, तो इसका पति कम से कम इसको उठाने वाला होना चाहिए, खेलने के बाद तो आगे कम से कम उठाए तो सही। तो उन्होंने प्रण कर दिया, गुरुजी को पूछ के किया सब कुछ कि हाँ प्रण करो ऐसे कि ये धनुष को उठाएगा प्रचंड चढ़ाएगा तो वो उसके वरमाला डालेगी उसको। लेकिन कितना तकलीफ हो उनको पता है आपको? अरे ये प्रण करने की वजह से जितने भी लोग सीता के सौंदर्य को देखकर मोहित होकर उसको उसका हाथ मतलब शादी में प्राप्त करने के लिए आए, वो सब परास्त हो गए ना वो। तो कितनी मानहानि समझो, मैं सोचता हूँ कि मैं तो मैं हूँ, मैं जाके यूं उठाऊंगा उसको, वो बालिका उठा सकते तो मैं थे, इतना महान वीर हूँ। ऐसे गर्व में सब लोग आए और तो हालत ख़राब होगी उनकी, तो अपमान है ना उनके लिए। सब लोग को नतमस्तक होकर जाना पड़ा, अरे एक गया दूसरा गया सैकड़ों आके गए, सैकड़ों मानहानिग्रस्त राजा एक दूसरे से मिले। ऐसा भी होता है ना, सब दुखी लोग मिल जाते हैं। और उन्होंने तय किया कि ये जो प्रण रखा है ना, ये कुछ षड्यंत्र है इसके पीछे, ये नामुमकिन चीज़ को उन्होंने रखा है। उनको अपनी बेटी किसी को देनी नहीं है, खाली लोगों का मजाक उड़ाना है बस, इसलिए सब रखा है। आओ सब मिलकर आक्रमण करते हैं। एक स्वर्गीय साल तक जनक महाराज मतलब मिथिला नरेश केवल युद्ध करते रहे इन राजाओं के साथ। एक तो आए कन्या का हाथ प्राप्त करने के लिए, नए प्रण पूरा कर सके, परास्त हुए और बाद में आक्रमण भी कर रहे हैं। सोचो एक कन्या का विवाह करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा उनको। फिर यथावकाश जब प्रभु रामचंद्र विश्वामित्र मुनि के कृपा से वहाँ पहुँचे तो फिर सब कुछ बढ़िया काम हो गया। उधर भी कोई आसान काम नहीं हुआ, उसके बाद भी बहुत संकट आए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, विमल नरेश को मुनि ने कहा कि आपको 3 करोड़ कन्याएं होगी, लेकिन बताया डोंट वरी, परम भगवान गोलोकेश्वर श्री कृष्ण, परम भगवान जो है वैकुंठेश्वर, हाँ, वो इनसे विवाह करेंगे। तो शांति हो गई। कैसे पहचानूंगा उनको मैं, ठंड लग रहा है, कैसे पहचानूंगा? तो उन्होंने वर्णन किया हो कि उनके छाती पर कौस्तुभ मणि होगा, वैजयंती माला होगी, हाँ, और वो मुरली धारण करके बजाते होंगे, मोर मुकुट धारण करते होंगे, सब वर्णन किया, पूरा पीताम्बर धारण किए होंगे, करधनी पहने होंगे और उनके 4 भुजाएं होंगी, ऐसा वर्णन किया। तो वो उन्होंने बहुत याद रखा उसको जो वर्णन किया था, क्योंकि उनको ढूंढना है ना उसको। तो यथावकाश लड़कियां बड़ी हो गई, शादी के समय हो गया उनका, तो उन्होंने अपने दूत को श्री वृंदावन में भेजा, उसका वर्णन लिख के दिया कि ऐसे ऐसे बालक को ढूंढो, वो कहाँ है। तो वो सब जगह वो गया और एक जगह उन्होंने देखा कि बहुत सारे ग्वाल बाल खेल रहे हैं, उसमें एक नीला बालक है, जैसे वर्णन किया था नीला रंग, एक नीला बालक है, मोर पंख धारण किया हुआ, मुरली बजा रहा है, पीताम्बर पहना हुआ है, सब कुछ वैसे के वैसा है, लेकिन 4 भुजा नहीं है, 2 भुजा है। वो परेशान हो गए, वो अब क्या करें, सब कुछ तो मिलता जुलता है, हाथों का खाली प्रॉब्लम है। तो वापस चला गया वो सिंधु नरेश देश, वापस चला गया वो, और ये वर्णन कर रहा था अपने राजा को कि ऐसे ऐसे मैंने किया, लेकिन ऐसे ऐसे उसमें एक मैच नहीं हो रहा है। तो उसी समय भीष्मदेव, जब भीष्मदेव यंग थे बहुत, देवव्रत, तो उन्होंने भी दिग्विजय किया था। दिग्विजय क्या होता है कि एक योद्धा अपना सार्वभौमत्व सिद्ध करने के लिए चारों दिशाओं में अश्व भेजता है, और जो जो अश्व को चैलेंज करेगा उसको युद्ध करके परास्त कर देता है, अश्व को दंडवत करेगा और टैक्स देगा, वो उसका मित्र बन जाता है। ऐसे चारों दिशाओं में भीष्मदेव जा रहे थे, तो कुछ दोस्त लाजा थे, तो सिंधु नरेश दोस्त थे उनके, तो भीष्मदेव तो ऐसे ही, मतलब ये वो तो फॉर्मेलिटी हो गई ना, खाली आना है, बस मिलना है, गले मिठाई खाना है और हाथ मिलाना है और जाना है आगे। तो भीष्मदेव वही उस समय पर आए थे जब ये दूत आया वहाँ पर। तो भीष्मदेव ने भी ये बात सुनी कि ऐसे ऐसे दूत बोल रहे हैं, तो राजा के मन में प्रश्न था कि भाई इसका क्या करें, अभी 2 भुजा वाले 4 भुजा का जो समस्या है वो कौन सॉल्व करेगा। तो भीष्मदेव ने कहा कि मुझे एक रहस्य के बाद बात बताता हूँ मैं आपको, वो किसी को पता नहीं है कि ये जो आपका वर्णन आपने सुना था वशिष्ठ मुनि से वो सही था, मथुरा में भी ऐसे ही पैदा हुए थे, लेकिन देवकी ने उनको जब कहा कि ऐसे मत जाना आप, मुझे कंस से बड़ा डर लगता है कि आपको वो हानि पहुँचाएगा, आप छोटे से नॉर्मल बालक की तरह आ जाओ, तो 2 भुजा वाले बन गए, और फिर उनको रातों रात गोकुल में लेके गए और फिर वो वृंदावन चले गए, इसलिए वो 2 भुजा वाले वही हैं, डोंट वरी। और भीष्मदेव फिर आगे के उसमें चले गए अपने दिग्विजय में। और फिर दूत दोबारा गया, और दोबारा जाकर फिर उन्होंने कृष्ण बलराम को लोकेट किया। अभी वो दूत भी बहुत दिव्य राजा का दूत है ना, वो भी हवाई मार्ग से आता था। फिर वो ऐसी जगह उतरा जब कृष्ण ने उनको देखा कि ये व्यक्ति मेरे लिए आया है, तो अपने दोस्तों को कुछ काम में लगा कर, नहीं दोस्तों को काम लगाते नहीं, वो वहीं पर सब लोग खेलते रहते हैं, श्री कृष्ण एक और रूप में उसमें से बाहर निकलते हैं, हवाई मार्ग से उसको मिलते हैं। आप समझ में आ रहे हैं, यहाँ पर सब लीला चल रही है, जो कृष्ण है वहाँ से एक कृष्ण और पैदा होते हैं और वो ये हवाई मार्ग से आने वाले दूत को मिलते हैं, और दोनों हवाई मार्ग से सीधे सिंधु नरेश चले जाते हैं सिंधु नगरी में। तो वहाँ पर अनेक हजारों यज्ञ कुंड बनाकर विमल राजा जो है वो यज्ञ करते रहते हैं, बहुत दिव्य भव्य व्यवस्था होती है। और वहाँ पर अनेक ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, उस सबके बीच में ऐसे हवाई मार्ग से दूत और श्री कृष्ण ऐसे उतर जाते हैं। विमल राजा ऐसे खड़े हो जाते हैं अपनी पत्नी को लेकर आदर के साथ, ऐसे तो इन रेवरेंस, सब ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ते हुए, और बड़े धन्यों का आंखों से आंसू आते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान को। वो तुरंत 3 करोड़ कन्याओं को बुलाते हैं वहाँ पर, पूरा अलंकार से लदे हुए, और उसी यज्ञ मंडप में हजारों यज्ञ के बीच में श्री कृष्ण भगवान का 3 करोड़ कन्याओं के साथ विवाह कर लेते हैं। फिर 3 करोड़ अपनी नई विवाह की हुई पत्नियों को लेकर भगवान हवाई मार्ग से जाते हैं काम्यवन में, और काम्यवन के बीच में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सबके रहने के लिए दिव्य व्यवस्था करते हैं। अब ये सब कब चल रहा है, जब उनकी बाल लीलाओं का समय ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पर बाल लीलाएं ऑलरेडी चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो बाल लीलाएं हो रही है उनको किसी को पता नहीं, यशोदा को पता नहीं, नंदा महाराज को पता नहीं कि साथ साथ में ये भी हो रहा है, वो सब गुप्त लीलाएं उनकी, यहाँ के किसी को पता नहीं ये सब काम्यवन में हो रहा है। और साथ साथ में यहाँ पर गौचारण, वत्सपाल, सब कुछ चल रहा है एज इट इज। तो वहाँ पर ये 3 करोड़ कन्याओं के साथ श्री कृष्ण भगवान रास रचाते हैं, और हर एक कन्या के, हर एक पत्नी के साथ एक एक कृष्ण निर्माण होते हैं। 3 करोड़ कृष्ण निर्माण होते हैं, हर एक पत्नी के साथ नृत्य करते हैं। तो उनके आंखों से अश्रु आते हैं प्रेम के, और शरीर से स्वेद निकलता है, सुगंधित स्वेद, परिश्रम के वजह, श्रम बिंदु, हाँ, परिश्रम के वजह से वो सारा एकत्र होकर एक सुंदर विशाल कुंड तैयार होता है। उस कुंड का नाम क्या है? विमल कुंड। तो जैसे ही ये कुंड पैदा होता है, श्री कृष्ण भगवान इसको वरदान देते हैं। एक तो वैसे ऐसे पैदा होता है, 84,000 तीर्थ जो है उसमें प्रवेश करते हैं। अब ये तीर्थ स्थान जो है ना, वो हमेशा व्याकुल रहते हैं आने के लिए, क्योंकि उनके जहाँ जहाँ उनकी सेवा होती है वहाँ पर लोग आते हैं, वहाँ पर रहते हैं, वहाँ के नदी में स्नान करते हैं, कुंड में अपने सारे पाप वहाँ छोड़ देते हैं। तो सारे तीर्थ जो है वो लोगों का पाप जमा करते रहते हैं, उनको भी अपने लिए मुक्ति चाहिए ना, तो यहाँ पर आकर अपना शुद्धिकरण कर लेते हैं। जैसे ये दिव्य कुंड निर्माण होता है, वो सारी 84,000 तीर्थ जो है वो तुरंत उसमें प्रवेश करते हैं। तुरंत भगवान वरदान देते हैं कि इसमें जो भी स्नान करेगा वो दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं लेगा, वो सीधे वैकुंठ को प्राप्त करेगा, और साथ साथ श्री कृष्ण भक्ति को, मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा, मेरे प्रेम को प्राप्त करेगा। तो विमल कुंड जो आज भी वहाँ पर, उसको तीर्थों का राजा कहा जाता है, मतलब सारे तीर्थ आ गए ना उधर। फिर हम जो जाते हैं ना गया में, गया को भी गोपियों के इच्छा के वजह से, इच्छा के कारण उन्होंने काम्यवन में गया को प्रकट किया है। अभी वो गया जाएंगे और वहाँ पर श्राद्ध करेंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। काम्यवन के गया में जाएंगे तो मोक्ष के साथ साथ कृष्ण प्रेम और गौलोक धाम भी प्राप्त हो जाएगा, ऐसा वरदान है, ऐसा है। ऐसे कई 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 उदाहरण हैं, कई एक और कथा बताता हूँ आपको। श्री कृष्ण भगवान कम से कम 112-113 साल दूर रहे ब्रज से, 11 साल 52 दिन के उम्र पे वो यहाँ से चले गए थे, अक्रूर जी आकर उनको लेके गए। तो उसके बाद में 125 साल की उम्र में महाभारत का युद्ध शुरू होने जा रहा था, तब गोपियाँ जो है उनका विरह जो एकदम पराकाष्ठा में पहुँच गया था कि अभी वो और नहीं मिलेगी कृष्ण के तो वो मर जाएंगे, ऐसा था उनका। तो भगवान ने मैसेज भेजा उनको कि आप लोग आ जाओ उधर कुरुक्षेत्र में, मैं मिलूंगा आपको मैं। तो गोपियाँ कैसी थी, 11 साल 52 दिन के श्री कृष्ण की छवि उनके मन में थी, लास्ट सीन एट 11.52 मतलब 11 years 52 days वो उनके मन में छवि है उनकी। उनके मन में वो छवि नहीं है कि राजा बने हुए हैं, राज वस्त्र धारण किया हुआ है, राज मुकुट धारण किया है, अलंकार, राजदंड, सैनिक, वो उनके सीन मन में नहीं, उनको पता भी नहीं उसका। वहाँ बड़ी आशा से पहुँचते हैं ये गाँव की लड़कियाँ, देखते तो पूरा शहर का माहौल है वहाँ पर, पूरा एकदम सिटी एटमॉस्फेयर, तो बड़े छुप एकदम सहमे जाते हैं। उधर देखते तो क्या, सैनिक आते पूरे मार्च करते हुए, और थोड़ा उसके पीछे रथ आता है बहुत बड़ा, और वो रथ में दूर से कोई दिख रहा है बहुत, राजा कोई बड़ा राजा खड़ा है एकदम उसमें, और रथ आगे आता है दिखता था ये तो कृष्ण है, लेकिन ये क्या पहन के रखा है उसने, इतना बड़ा मुकुट, इतना बड़ा ये, और पीछे और रथ आते हैं बहुत सारे, उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ हैं, लोग कह रहे हैं कि ये सब उनकी पत्नियाँ हैं, सो मेनी क्वींस ही हैज गॉट, माय गॉड। तो बड़ा उनको अजीब लगता है, जो उनका कृष्ण जो था वो कभी उनको गले मिलते थे, कभी उनको एकांत में नृत्य करते थे, 1-to-1 रिलेशन था, अभी वो कुछ 1.5 मील दूर है उनके आँखों के सामने, मतलब उनको पहुँचना भी इतना बड़ा, भीड़ से भी 2 दिन लगेंगे पहुँचते, उसने इतना बड़ा भीड़ है बीच में, और वो एकदम ऑफिशियल एटमॉस्फियर है, हाँ। तो बड़े विरह में व्याकुल हो गए, वो मिल भी नहीं पाए, बात भी नहीं कर पाए, चले गए वैसे ही वो। उसके बाद में महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद में भगवान दंतवक्र को मारने के लिए मथुरा आए, और दंतवक्र को मारने के बाद उस बहाने उन्होंने मथुरा के अंदर प्रवेश किया और ब्रजवासियों को मिलने आए, क्योंकि तभी वो एकदम परम अवस्था में थे विरह के, तब जब इनको मिले कृष्ण को तो सांत्वना हुई, आनंद आया उनको, तो वो याद करने लगे कि हम लोग क्या 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 करते थे, तो कहते हैं उनको, अरे हमने तो सुना था कि जब आप द्वारका में थे तो हमारी याद में रोते थे, क्या ये सच है? ये तो सच है, सबको पता है, रात रात में उठते थे, बिस्तर में उठ के खड़े होते थे, ललिता विशाखा राधे विश्वभानु नंदिनी करुणामयी पुकारते थे, वो सब रानियां परेशान होती थी, द्वेष से नहीं कि हमारे अंदर से क्या कमी है जो हम नहीं पूरा कर सकते, हमको पता होना चाहिए, हम भी उसको पूरा करना चाहेंगे, इस भाव से वो दुखी होती थी। और एक बार उन्होंने ये गोपियों की महानता, राधा रानी की महानता को उन्होंने सिद्ध भी कर दिया था एक लंबी लीला के माध्यम से, लेकिन कई बार रोते थे वो, रात को दिन में याद करते करते, भोजन करते करते भी रोते थे। तो उनके अश्रुओं से वहां पर एक नदी बनी है, गोमती नदी, ये भी गोपियों को पता था कि हमने सुना वहां पर एक नदी बनी हुई है आपके अश्रुओं की, तो बोला हाँ हमको दर्शन कराओ उसका। तो भगवान ने उधर गोमती प्रकट कर दिया, कोशी में, यहाँ से कोशी 25 किलोमीटर दूर है, वो रेलवे स्टेशन भी है कोशी, तो कोशी यानी नंद महाराज का कोष है वो, यानी ट्रेजरी तिजोरी नंद महाराज की वहाँ पर रहा करती थी, इसलिए उसका नाम कोशी है। तो कोशी में भगवान ने द्वारका को प्रकट किया है, तो गोमती नदी एक कुंड के रूप में प्रकट हो गई। तो उन्होंने कहा थे, अरे आपके द्वारका में हमने सुना बहुत बड़ा समुद्र था, आपने समुद्र के अंदर अपनी नगरी बसाई थी, हमारे यहाँ तो कोई समुद्र हमने दर्शन कभी किया नहीं, हमको समुद्र के दर्शन भी करने। तो भगवान ने उनके आंखों के सामने समुद्र प्रकट किया, उसको एक कुंड में समेट लिया, और वो है रत्नाकर कुंड, द्वारका का समुद्र, वो भी आज कोशी में है। ऐसे बहुत अनंत पवित्र स्थान जो है वो श्री ब्रज भूमि में विराजमान है, सारे तीर्थ यहाँ पर आश्रय ग्रहण करते हैं। फिर हमारे नंदगांव में पावन सरोवर है, पावन सरोवर में उसका नाम नंद सरोवर था पहले, तो नंद बाबा वहां पर रोज स्नान करते थे। तो एक दिन उनके घर में ऐसा सूखा आइटम बन रहा था, कुछ सूखा होता ना ड्राई प्रसाद, लोग सफर में लेके आता ना, कुछ क्या बोलते हैं उसको, मटरी होती है कभी कभी, कुछ सूखा भजिया होता है, आपके पास वो होता ना पूड़ी खकरा, ऐसे ड्राई आइटम बना के लेके जाते। तो ड्राई आइटम जब बन रहे थे तो कन्हैया ने पूछा कि क्या बन रहा है ये सब, क्या आइटम है? तो उन्होंने कहा इसको मटरी कहते हैं, ये जो सफ़र में है ना, सफ़र में यूज़ करते हैं लोग, कौन सफ़र जा रहे हैं, सफ़र कौन करने वाला है? बोले हमारे आपके बाबा है ना, वो प्रयागराज जाना चाहते हैं, त्रिवेणी संगम। अच्छा उधर क्या होता है? उधर बोलते गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, और जब 3 नदियाँ मिलती है तो उस जगह पर स्नान करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए बाबा सब बड़े ब्रजवासियों को लेकर वहाँ जाना चाहते हैं। बोला अच्छा, तो बाबा से मिलने गए, बाबा आप त्रिवेणी जा रहे हो? हाँ त्रिवेणी जा रहे हो। ऐसे करो आज मत जाओ, कल जाओ, वो कल ना अच्छा दिन है बहुत। आज वैशाख द्वितीया है, कल वैशाख तृतीया है, अक्षय तृतीया है, बहुत बड़ा मुहूर्त है, कभी भी निकलो तो मुहूर्त ही मुहूर्त है, आज के बदले में कल निकलो, क्या नुकसान क्या। हाँ बात तो सही है, चलो एक दिन पोस्टपोन। और रोज जाकर स्नान करते अपने नंद सरोवर में सुबह सुबह उठकर, रात को वहीं रुके उस दिन जाने के बदले में, और सुबह उठकर 4 बजे गए, 4 बजे अंधेरा होता है, वो दिन गए तो 4 बजे उजाला, इतना जोरदार उजाला, बोले ये क्या रहस्य की बात है। देखते तो क्या है, उनके सरोवर में एक साइड में एक बड़ा लंबा चौड़ा दिव्य तेज वाला शरीर वाला राजा स्नान कर रहे हैं, मुकुट पहना हुआ है बड़ा एकदम, राजवस्त्र पहने हुए, अलंकार पहना हुआ है, और वो नंद सरोवर में स्नान कर रहा है। स्नान करके बाहर आता है और वही वस्त्र गीले लेकर वो मट्टी में गोल गोल घूमता है, मट्टी में लेटकर फिर नदी में कुंड में प्रवेश करता है, फिर स्नान करता है, फिर मट्टी में, फिर पानी में, फिर मट्टी में, फिर पानी में। बोले ये क्या चीज़ है, मैं तो एक ही बार स्नान कर घर चला जाता हूँ, ये कौन सा स्टाइल, स्नान करने का स्टाइल है। और ये व्यक्ति तो राजा लगता है कोई, और वंदनीय भी लगता है, मतलब मैं भी राजा हूँ लेकिन बड़े महान संत लगते कोई। तो बड़ी नम्रता से उनके पास गए, महाराज जी दंडवत प्रणाम, प्रणाम किया उनको, बोला आपका परिचय, आप कौन हो। तो कहते हैं मैं प्रयागराज हूँ। तुरंत और प्रणाम किया, जिसके पास जाने वाले आज आज दिन में वही सामने खड़े हैं, मूर्तिमान प्रयागराज। दंडवत प्रणाम किया भक्ति भाव से, बोला महाराज जी एक प्रश्न करूं क्या। बोले आप ये ऐसे क्यों कर रहे हो, पहले जल में फिर रज में फिर जल में फिर रज में, ये क्या रहस्य है। वो कहते हैं ये जल और ये रज इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि साल भर हमारे जल में दुनिया भर के पापी लोग आके स्नान करते हैं, अपना पाप छोड़कर हमें पूरा पापमय कर देते हैं, और साल में एक दिन अक्षय तृतीया के दिन हम यहाँ आते हैं और अपने सारे पाप को धोकर पुनः शुद्ध होकर अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। एक दिन कैजुअल लीव, साल भर ड्यूटी। आश्चर्य होता है उनको, पुनः दोबारा प्रणाम करते हैं, और जैसे ही मुड़ते हैं देखते हैं कि उधर के किनारे पे बहुत सारी सुंदर युवतियां हैं, बहुत सुंदर युवतियां हैं, कई सारी हैं, और वो भी वही कर रही है, जल में प्रवेश कर रही है, फिर रज में लोटपोट हो रही है, फिर जल में, फिर रज में, फिर जल में, रज में, पूरा घूमकर वहाँ जाते हैं। पूछते देवियों आप कौन हो, बोलते मैं गंगा हूँ, यमुना हूँ, सरस्वती हूँ, नर्मदा हूँ, सरस्वती, नर्मदा, सरयू, कावेरी, सिंधु, भीमा, इंद्रायणी, सबका नाम एक एक करके बोलते हो। वो कहते हैं हमारा भी वही प्रॉब्लम है, हमारे जल में सब लोग साल भर आकर अपना पाप छोड़ के जाते हैं, हम लोग पाप से भर जाते हैं, तो एक दिन छुट्टी निकाल कर आज के दिन यहाँ आके आते हैं और स्नान करके अपना पूरा पाप नष्ट करते हैं, फिर अपने अपनी सेवा करने चले जाते हैं। नंद बाबा सबको प्रणाम करते हैं, घर पे आके बोलते हैं वो ड्राई प्रसाद भी यही खाएंगे, लेकिन त्रिवेणी संगम नहीं जाएंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं जाने की। तो उस दिन से उसका नाम पड़ा पावन सरोवर। ऐसे अनंत कहानियाँ ब्रज में, जगह जगह की कहानियाँ हैं, हर जगह किसी न किसी पवित्र स्थान ने और पहाड़ ने आश्रय लिया हुआ है, कुछ दृश्य है कुछ अदृश्य है, लेकिन भगवान ने कई कहानियों के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया है कि जो ब्रज में एक बार पहुंच जाता है उसको और कहीं बार जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाने पर दुख नहीं करना चाहिए। वैसे तो वृंदावन धाम, मायापुर और जगन्नाथपुरी धाम, ये तीनों एक समान हैं। विशेष बात यह है कि तीनों में सब कुछ समाया हुआ है। जैसे मायापुर जाएंगे आप तो मायापुर में राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गिरि गोवर्धन है, जगन्नाथपुरी है, क्या नहीं है, अयोध्या है, एवरीथिंग इज देयर। जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहाँ पर भी वो प्रविष्ट वन है, वहाँ पर गोवर्धन पर्वत है, ब्रह्मगिरी, राधा कुंड है, सब कुछ है उधर। तो ये तीनों धाम में सारे धाम सम्मिलित हैं, जैसे तीनों धाम अभिन्न है एक दूसरे से। यहाँ तक कि कहा गया है कि जो तीनों धामों को एक दूसरे से अलग अलग मानता है वो अपराधी है, ऐसा कहा गया है। अगर आप समझते हो कि जगन्नाथपुरी अलग है, मायापुर अलग है और वृंदावन अलग है ऐसे सोचते हो मन में भी, तो ये सोचना भी पाप धाम अपराध माना गया है। तो ये तीन चीज को छोड़कर बाकी सब बाहर के तीर्थ हैं, और ये तीन जो है वो सबसे महान धाम है भगवान की। और यहां पर जो आदमी आता है उसको आने के लिए तो पहले बहुत पुण्य करना पड़ता है, और वो पुण्य के हिसाब के कारण अगर आता है तो अगर सही भाव में आता है, अगर समझो वो सही भाव का मतलब क्या है, सेवक भाव, मैं सेवक हूँ, भगवान का अंश हूँ, मालिक नहीं हूँ, धनवान नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये सब तो बाहर की उपाधियाँ हैं, मैं केवल इनका अंश हूँ, इनका सेवक हूँ, इनका दास हूँ, इनकी सेवा करने के लिए आया हूँ, जैसे कि आप आए सर्जन हो, आपको सोचना चाहिए कि तो भगवान ने दी हुई कला है उनकी सेवा में लगाने के लिए आया हूँ। एक तो धन कमाने का साधन है, लेकिन मूल रूप से वो उनकी सेवा में दिया हुआ कला है, उनकी सेवा में जब लगाता हूँ तो ही उसकी परिपूर्णता है, बाकी सब तो धन कमाने के लिए उपयोग होता है उसका। तो सारे अपने जो उपाधियाँ हैं वो छोड़कर जो आएगा यहाँ पर सेवा भाव में आएगा, निरपेक्ष भाव से आएगा, क्या खोया क्या पाया इसका गणित नहीं करेगा, और नम्र बनकर रहेगा, सबकी सेवा करने के भाव में रहेगा, वैष्णवों की सेवा में, वैष्णवों के संग में रहेगा, इन शॉर्ट सही भाव में यहाँ पर निवास करेगा, तो वो व्यक्ति यहाँ पर एक बार आने से इस जन्म के अंत होने के बाद दोबारा भौतिक दुनिया में वापस नहीं आएगा। इतना ही धाम का महात्म्य है। एक बार आदमी यहाँ पर पहुँच गया तो उसको गौलोक धाम का वीज़ा मिल जाता है, फिर आज से लेकर मरने तक उसको तैयारी करनी है वहाँ जाने की, तैयारी अधूरी रह गई तो दोबारा आएगा, लेकिन जाना उसको वही है, फिक्स हो गया उसका। ऐसा कहते हैं कि नरसिंह भगवान के हाथ से भी कोई मर जाता है तो भी उसको वैकुंठ मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण हाथ भगवान के हाथ से इसकी मृत्यु होती है, उसको निश्चित रूप से वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान का ये धाम है। हम लोग तो टिकट निकाल के, मथुरा का टिकट निकाल के आ गए इधर, है ना, फिर रूम होटल में रूम भी बुक किया है, इधर गर्म पानी का व्यवस्था किया, भोजन का व्यवस्था किया है, ये सब करने से परम धाम की गति प्राप्त नहीं होती है। ये तो फॉर्मेलिटी है, हमको तो शरीर है, शरीर के लिए तो सोने के लिए जगह चाहिए, भोजन के लिए अन्न चाहिए, थोड़ी सुविधा चाहिए हमको, उसमें जरूरत कोई गलत काम नहीं है, लेकिन वो करने से भगवत धाम प्राप्त नहीं होता है। वो सब सुविधा लेने के बाद में जो भाव हम लोग रखते हैं, वो भाव को परवरिश करेंगे और उस भाव से रहेंगे और हृदय से इस धाम को हृदय में बिठाकर अपने घर ले जाएंगे और उस धाम के चिंतन में मग्न रहेंगे जब भी जहाँ भी रहेंगे, तो हमारी धाम की यात्रा सफल है और वो धाम की यात्रा आपको भगवत धाम पहुँचा देगी। इसलिए धाम में शरीर से आना और धाम में आत्मा से प्रवेश करना, तो बहुत अंतर है। हम सब लोग शरीर से तो आ चुके हैं बाय ब्रेक फॉर्चून, लेकिन आत्मा से प्रवेश अगर नहीं हुआ है तो करने के लिए प्रयास करना चाहिए कि हम आत्मरूप से निरंतर कैसे रहें। ऐसे नहीं कि 4 घंटा आत्मरूप, 2 घंटा शरीर रूप, 4 घंटा मन रूप, 4 घंटा आत्मस्वरूप, ऊपर नीचे ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे होता है क्योंकि काल का प्रभाव ऐसा है कि सडनली हमारा अभी कथा चलती तो सडनली एक शादी का बैंड बजा आता है, पूरा एकदम एवरीथिंग डिफरेंट। अभी तो बहुत दिन से नहीं कुछ बैंड बजा बजाना, तो हमारे कैंप में तो हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है, तुरंत वो धाम के वाइब्रेशन को चेंज कर देता है और आपको लगता है क्या हो गया है, सभी ये सारे चक्र के बीच में हमको अपनी चेतना को सही जगह पर रखना है। जैसे समझो आपके हाथ में एक दीपक है समझो, और कहा गया है कि दीपक को आपको इस जगह से उस जगह पहुंचाना है, बीच में हवा आ रही है, कोई धक्का दे रहा है, कोई बीच में लोग आ रहे हैं, तो कितना ख्याल रखना पड़ेगा आपको उस दीपक को बचाने के लिए, आपको संभाल के उसको ले जाना पड़ेगा, आपको वहां तक पहुंचाना है उसको, तब तक बुझना नहीं चाहिए उसको। उस तरह से आप धाम में आए हो और जिस चेतना को आपने उत्पन्न करने का प्रयास किया है उसको बनाए रखना जितने दिन आप धाम में हो वो एक चैलेंज की बात है। सडनली बीच में मम्मी की याद आएगी, बम्बई में सडनली बम्बई के किसी गुजराती दुकान के फाफड़े की याद आएगी। हाँ क्यों जुगल जी, जलेबी फाफड़ा बीच में याद आएगी ना कभी कभी। मलाड में हुए ना वो एमएम मिठाई वाला, ऐसा कुछ आपको छीनेगा यहाँ से, आपके मन को वहाँ छीन लेगा। लेकिन ये सबको आपको रोक कर अपने मन को ब्रज में उस तिनगों के लिए फिक्स रखना है, ताकि यहाँ पे रहने का पूरा आत्म स्तर पर आपको लाभ मिले। उसी चेतना का जो आपको यहाँ पर मुमकिन है वो पूरा लाभ आपको मिले, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। अपने आप नहीं होता है कुछ, अपने आप कुछ होता है क्या? यहाँ पर आने के लिए बैग भरनी पड़ती है, आपको सोचना पड़ता है कि कितने कपड़े चाहिए, कितना टॉवल चाहिए, कितना सॉक्स, कितना क्या, चश्मा का कवर चाहिए, चश्मा स्पेयर चाहिए वृंदावन में एक ऐसा बहुत सारा प्लानिंग करके फिर आपको निकलना होता है। ऐसा आप थोड़ी निकल जाते हैं कल जाना है निकल गए, ऐसा नहीं होता है। ट्रेन के लिए भोजन लेना पड़ता है, बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है, और ये सारा प्लानिंग बाहर का है, इधर का प्लानिंग भी करना पड़ता है, हाउ टू स्टे हियर। क्योंकि ये धाम बड़ा दिव्य है और साक्षात श्री कृष्ण है, ये इसमें प्रवेश करना यानी साक्षात श्री कृष्ण है। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि एक दिन हम लोग वृंदावन में एक आश्रम में खड़े थे, मैं और गुरु महाराज ऐसे एक आश्रम में ऐसे वॉक कर रहे थे गार्डन में, अचानक गुरुदेव ऐसे रुक गए, बोले विश्वरूप रुको। मैं रुक गया, बोला आंख बंद करो और केवल महसूस करो क्या हो रहा है। तो दोनों ने आंख बंद किया, हमने खड़े रहे ऐसे, बोले क्या लग रहा है आपको। मैंने कहा कि मंद मंद हवा की लहरें आ रही हैं। तो उन्होंने कहा हाँ सही बात है, बोले ब्रज में मंद मंद हवा की लहरें का मतलब होता है कि श्री कृष्ण भगवान आपको आलिंगन दे रहे हैं। इसी तरह से हवा का अनुभव करना कि हमेशा हवा जब आती है ब्रज में तो श्री कृष्ण भगवान आपको आलिंगन दे रहे हैं, मतलब। और फिर जल जो है यहाँ का पूरा रसों का सार है, भक्ति रस का सार यहाँ का जल है। यहाँ की हर वस्तु, यहाँ का तोता, कोई भी पक्षी बोलता है तो आपको अलग अलग आवाज आएगी, लेकिन आपको समझना है कि सब राधे राधे बोल रहे हैं। ये दिव्य दृष्टि है, तो संत के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। ये सब सत्य है, ये कोई कल्पना करके आपको नहीं बता रहे हो, आपके मन में कुछ कविता डाल रहे, ऐसा नहीं है। ये सत्य को आपको अवगत करा रहे हैं। और इस दृष्टि से जब हम ब्रज को अनुभव करते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा, जैसे किसी जगह पर गए तो आस पास देख रहे, अरे नीम का पेड़ है, अरे तमाल वृक्ष है, अरे कदम का वृक्ष है, अरे बरगद का पेड़ है, तो पीपल का पेड़ है, उसके लिए भी तुरंत ध्यान नहीं जाता हमारा, कोई बताएगा देखो कितने पवित्र पेड़ यहाँ पर उपस्थित है, कथा सुनने के पहले देख लो, इतना सुंदर नज़ारा आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तो धाम की चेतना इस प्रकार से जागरूक रखनी चाहिए, जिस जिस जगह पे जाएंगे, जिस जिस जगह कथा सुनेंगे, जिस जगह सेवा करेंगे, जिस जगह बैठेंगे, सब जगह पर ये चेतना को सतर्क रखना चाहिए, अलर्ट, यू हैव टू बी अलर्ट अबाउट द धाम, धाम के प्रति अपने आप को सतर्क रखना चाहिए। इसलिए अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपराध करने से हमारा जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, जो लिंक है वो ब्रेक हो जाता है। इसलिए किसी का अपराध नहीं करना चाहिए, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिसकी सेवा कर रहे हैं उनका अपराध नहीं करना चाहिए, वो पूरी तरह से आदर के साथ में सेवा करते रहना चाहिए, और उस सेवा में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि मैं तो यहाँ पे आने के योग्य नहीं हूँ, मुझे आने को तो मिला है, ऊपर सेवा भी मिली है, मेरी सेवा करने की योग्यता भी नहीं है, लेकिन मुझे सेवा करने का मौका दिया जा रहा है पूरे सम्मान के साथ। ये भाव जो उत्पन्न करेगा, जितना वो कृतज्ञता पैदा करेगा, उस व्यक्ति को इस धाम का पूरा गौरव हृदय में प्राप्त होगा, हृदय में प्रवेश करेगा, उसकी पूरी यात्रा को, उसके पूरे जीवन को वो धन्य करेगा। दिस इज द ग्लोरी ऑफ श्री वृंदावन धाम। हम लोग थोड़े बड़े भाग्यवान हैं, हम लोग केवल वृंदावन धाम में नहीं है, हम लोग वृंदावन धाम के एकदम हार्ट में बैठे हुए हैं, जहाँ पर वृंदावन धाम के मालिक जो है वो पूरे वृंदावन में लोग उनके रज चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो मालिक खुद आते हैं रज लेने के लिए। स्वामी ने राधे राधे के चरणों के रज लेने के लिए खुद आते हैं, वहाँ पर हम लोग बैठे हैं। वेरी स्पेशल प्लेस। आप सब लोग भाग्यवान हो, अपने भाग्यों को भूलना नहीं। हाँ, जब हम लोग इसके बारे में बड़े कैजुअल हो जाते ना तो हीरा भी पत्थर बन जाता है हमारे लिए। आया समझ में आपको? तो बच्चा कोई होता है, जो बच्चे को हाथ में हीरा दे दिया तो दूसरे बच्चे के हाथ कैच कैच खेलेगा वो, उसके लिए तो गेंद है खेल खेलने का, उसमें क्या है। ऐसे एक बार एक पारस मणि जो है वो किसी ने औरतों के हाथ में दिया, तो उन्होंने सोचा कि कपड़ा को घिसने के लिए अच्छा है, तो वो कपड़े घिसना चल रही तो उसमें से उसके बाद में बच्चों के पास में गया तो बच्चे ने उनको कैच कैच खेलना शुरू किया, क्योंकि उनकी जितनी बुद्धि है उतना ही उनको उसकी अनुभूति होगी, लेकिन जो नॉलेजेबल व्यक्ति है उसको लगा कि कपड़े घसने का पत्थर नहीं है ये किसको भी स्पर्श करेगा वो सोना बना देगा, ये पारस मणि है। तो ये परखने के लिए भी नॉलेज होना चाहिए कि हम किस जगह पर आए हैं। तो ज्ञान सबसे पहली बात है, ज्ञान के बाद हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है। हाँ, अरे वृंदावन धाम में आए, अच्छा। फिर जो इच्छा प्रकट हुई है उसको प्राप्त करने के लिए निश्चय होना चाहिए, निश्चय के बाद में फिर प्रयास करेंगे, फिर वो प्राप्ति होगी जो हमको चाहिए। लेकिन कुछ नॉलेज ही नहीं है तो जो हीरा है वो आपके लिए पत्थर है। और नॉलेज का ऐसा प्रभाव है कि उसमें पत्थर भी हीरा बन जाता है। कैसे, उसकी भी छोटी कहानी है, अंत में बताऊंगा आपको। कि एक बार नामदेव महाराज के पीछे एक ब्रह्म राक्षस लग गया, नामदेव महाराज के पीछे। बताया मैंने काम ही क्या? नहीं ना, आप लोग नए आए हो। तो नामदेव महाराज इतने भगवान के श्रेष्ठ भक्त थे, महाराष्ट्र के इतने, पंजाब में भी बहुत फेमस है वो। तो नामदेव बाबा दिन रात कृष्ण भावना में मग्न रहते थे, उनको कण कण में सब जगह विट्ठल दिखाई पड़ते थे। किधर भी कुछ भी देखेंगे, गलत आदमी को देखो, अच्छे आदमी को देखो, किसी को भी देखो, उसको हमेशा कृष्ण की विट्ठल की याद आती थी। एक बार ब्रह्म राक्षस लग गया उसके पीछे, तो उन्होंने कहा, हे विट्ठल भगवान, ये क्या रूप धारण कर लिया आपने आज? और कोई रूप धारण करने का मौका नहीं मिला? तो ब्रह्म राक्षस और जोर से उनका, मतलब ब्रह्म राक्षस तो 11 प्रकार के भूत होते हैं, उसमें 11वां प्रकार ब्रह्म राक्षस बहुत भयंकर होता है वो, बहुत भयंकर। उसको जो बाधा होती है ना, उसको खून की उल्टियाँ करता है वो। तो ब्रह्म राक्षस तो उनको झपट नहीं पा रहा है, लेकिन बहुत डराने की कोशिश कर रहा है, और ये हंसते जा रहे हैं, अरे आज तो अजीब रूप धारण कर लिया आपने, अजीब रूप धारण कर लिया, अरे कैसे धारण कर लिया आपने रोज आज, प्रभु आपकी क्या लीला है। ऐसे करते 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 प्रभु को उस ब्रह्म राक्षस के हृदय से प्रकट होना पड़ा, और ब्रह्म राक्षस प्रभु के प्रकट होने की वजह से उद्धार हो गया उसका, और नामदेव की निष्ठा के वजह से वो ब्रह्म राक्षस के अंदर जो परमात्मा था वो प्रकट होकर ब्रह्म राक्षस को मुक्त किया उसने, और प्रभु ने दर्शन दिया नामदेव जी को। मतलब ब्रह्म राक्षस के रूपांतर भगवान में हुआ कि नहीं? किसने किया? वो चेतना ने किया, कॉन्शियसनेस। तो हमारी कॉन्शियसनेस अगर कृष्ण भावना भावित है तो आपके जीवन में जो भी आपको लगता है नेगेटिव है सब पॉजिटिव बन जाएगा। जो भी आपके जीवन में संकट लगता है, आपको कष्ट लगता है, पीड़ा लगती है, अगर आपको कृष्ण पर प्रेम है तो सारे आपके जीवन के प्रतिकूल जो चीज़ें हैं वो तो एक तो अनुकूल बन जाएंगी, और उसका रूपांतर कृष्ण प्रेम में हो जाएगा। बृहद भागवतारम में ये वाक्य है, ऑल एक मिनट ना बोलता हूँ आपको, ऑल मेजरेबल थिंग्स टर्न आउट टू बी बेस्ट फॉर दोज हु लव गॉड। जो भी भयंकर प्रतिकूल दुखमय घटनाएं जिसके जीवन में होती है, अगर वो भगवान पर प्रेम करता है तो वो उसके लिए अनुकूल बन जाती है। ऐसे बृहद भागवतामृत में कृष्ण भगवान स्वयं बोलते हैं। तो क्लू क्या है इसका? कृष्ण प्रेम। अगर आप कृष्ण भावना में हो तो आपके जीवन की हर एक प्रतिकूल घटना आपके लिए अनुकूल बन जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी वो। पहले आपको थोड़ी देर रुकना है, बस वॉच करना है उसको, आपको समझ में आएगा कि ये लग रही है प्रतिकूल लेकिन ये मेरे हित में है। बने रहो, लगे रहो, एक दिन आपको पूरा प्रकट हो जाएगा कि हाँ, अरे हाँ, इसलिए बनाया था इसको। ओके, वेरी गुड गुड, आई स्टक ऑन। तो हम सब लोगों को लगे रहना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।